ओम शांति। हमारे बीच में माँ शारदे के रूप में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी विराजमान हैं। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको अव्यक्त बाप दादा के द्वारा सरस्वती का वरदान प्राप्त है। आपकी जिभ्या पर सरस्वती विराजमान है। आप ज्ञान के मोतियों को आप हंसों के लिए लुटाने वाली हैं। आप ज्ञान में 1960 से बाल्यकाल से ही चल रहे हैं और आप 1969 में बाबा के बेहद घर में समर्पित हुए और मधुबन में 1976 से आप विश्व की सेवाएं दे रहे हैं। आप हर की पौड़ी मधुबन में रहकर संपूर्ण विश्व की सेवाएं करती हैं। आपने सैकड़ों देशों की यात्रा की है और बाबा का संदेश दिया है। आप हिंदी, अंग्रेजी और सिंधी की प्रखर ओजस्वी वक्ता हैं। आप राजयोग की वरिष्ठ शिक्षिका हैं। प्यारे बाबा ने आपके ही द्वारा योग की प्रथम कमेंट्री अनुभूति के द्वारा निकलवाई, जो आज तक भी सब कमेंट्रीज में सर्वोपरि अनुभव कराने वाली होती है। ऐसी आदरणीय राजयोगिनी अनुभवी वक्ता को अपने बीच में पाकर हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। मैं दीदी के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। हे मां शारदे तेरी दृष्टि से प्यार मिलता है। हे मां शारदे तेरी दृष्टि से प्यार मिलता है। दिव्य ज्ञान का भंडार बरसता है। मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा। मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा। आपसे ही तपस्या का प्रकाश मिलता है। आपसे ही तपस्या का प्रकाश मिलता है। आदरणीय दीदी, जो भट्टी का मूल लक्ष्य है, डबल लाइट स्थिति कैसे बनाए, इस पर हमें प्रकाश डालेंगी और जून मास में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के ऊपर भी अपनी गहन अनुभवों को साझा करेंगी। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी, आप हेडक्वार्टर मधुबन की शान है, सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी का आप मान है। आपको अपने बीच में पाकर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक हाथ की ताली से पुनः हम दीदी का जोरदार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि अपने मोतियों से हमारी बुद्धि की झोली को भरपूर करें। आदरणीय दीदी जी,
अपने मेरी तो बहुत मेहमान की, अब अपना परिचय तो दो पहले।
कल करा दिया दीदी?
करा दिया था।
कल क्लास कराई थी ना उसने?
अच्छा अच्छा, परिचय
आप होते हैं तो आप कराते थे लेकिन इस बार आप बाहर थे।
अच्छा अच्छा, परिचय हो गया। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब आप 3 दिन पहले मधुबन आए थे तब आपको ये विजय माला पहनाई गई, अभी भी पढ़िए ना, ये विजय माला है। सबको विजयी रतन का टाइटल दे दिया और क्या ठप्पा लगाया, डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्टी। इस तपस्या भट्टी में आपको पकना है 3 दिन और इन्हीं 3 दिनों में आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अनुभव किया, तो आपको जरूर महसूस हुआ होगा कि बाबा ने मधुबन में बुलाकर भरपूर कर दिया। हो गए भरपूर? हाँ हो गए भरपूर, हाथ उठा, हो गए भरपूर जी। इतने सब वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा आपने सुना, शांतिवन में भी आप क्लासेस करते हैं, वहाँ भी योग करते हैं, लेकिन वहाँ तो बहुत विशाल है और यहाँ इस मेडिटेशन हॉल में जहाँ स्वयं अव्यक्त बाप दादा बच्चों से मिलते थे, जहाँ दीदी दादियों के हम क्लासेस सुनते थे, जहाँ पर योग तपस्या करते रहे हैं, ऐसे स्थान पर आपको यह भट्टी करने का मौका मिला और बड़ा सुंदर शीर्षक दिया है, डबल लाइट। डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्टी। पढ़ा आपने? सब ध्यान से पढ़ा होगा अभी वो बैज पर। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद डबल लाइट हो गए, डबल लाइट हो गए। हाँ, या कुछ बोझ लेके जाएंगे कल, जो समझते हैं मैं सब सारा बोझ यही स्वाहा करके जा रहा हूँ और डबल लाइट होके जाऊंगा कल, वो हाथ उठाए। अच्छा, कोई भी बोझ नहीं, कोई भी बोझ नहीं। परिस्थितियां तो आएंगी, वो थोड़ी छोड़ेंगी आपको, माया भी नहीं छोड़ेंगी, परिस्थितियां भी नहीं छोड़ेंगी। वहाँ जाएंगे तो अभी तक बारिश तो आई नहीं है, फिर वो गर्मी फिर सताएगी। हाँ जी, अभी मौसम अच्छा है, ओ बारिश पड़ रही है, ओ तो आपका बारिश वेलकम करेगी। हाँ बहुत अच्छा है, तो ये तो बहुत अच्छी अच्छा समाचार सुना दिया आपने। पर यहाँ तो अभी बारिश नहीं पड़ी है, फिर भी मौसम ठीक है, हाँ सुहावना है। तो सचमुच हम तो देखते, अभी मैं पूना होकर के आई, पूना कहते पूना में बहुत अच्छा मौसम होता है, लेकिन अभी तो वहाँ भी इतनी गर्मी थी, वहाँ भी इंतज़ार कर रहे थे बारिश की, बारिश का, तो वहाँ भी गर्मी बहुत महसूस हुई। सारा दिन एसी में रहना, और मधुबन में तो एसी की ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरल एसी, और सर्दी के दिनों में तो बिल्कुल एसी, तो क्या फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं है। इतना अनुभव सुंदर होता है, तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं कहाँ से कहाँ हम थे। वैसे तो सेवा बहुत हुई, लेकिन मौसम तो गर्म ही था। और वापस जब मधुबन आए कल, तो राहत मिली, वहाँ ठंडक मिली, रात को भी ठंडी ठंडी हवाएं, शाम को भी बहुत बढ़िया ठंडी हवाएं अनुभव हुई। परंतु मुख्य बात तो हमारी अवस्था है, तो हमारी अवस्था कैसी हो, क्योंकि लक्ष्य तो बाबा ने बहुत ऊंचा दिया है। हम लक्ष्य में क्या कहते हैं, हम क्या बनने आए हैं यहाँ? जब कोई हमसे पूछते हैं आप लोग क्या सिखाते हो, आप लोगों का लक्ष्य क्या है, सबसे पहला यही प्रश्न पूछते हैं लोग, आपका लक्ष्य क्या है। तो जो सबसे मुख्य बात हम उनको यही कहते हैं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। यही बताते हैं ना बाबा भी मुरलियों में कहते हैं, कोई आपसे पूछे इस संस्था का लक्ष्य क्या है, तो आप उनको यही बताओ, मनुष्य से देवता बनना। अब ये तो मोटे रूप से कह दिया, लेकिन उस देवता बनने तक कितनी बातें आती है, उन सब से हमें क्रॉस करना होता है, तभी तो जाके देवता बनेंगे ना। ऐसे तो नहीं बनेंगे देवता, ये नहीं कि हर बस आए और बन जाएंगे देवता, कोई छू मंतर है, ऐसे तो नहीं बनेंगे। तो बाबा उसके लिए कितना प्रोसेस बताते हैं, क्या ऊंची ऊंची बातें बाबा हमें बताते हैं, हर मुरली में कितनी सुंदर विधियां बताते हैं, कितनी सुंदर ज्ञान के रत्नों की बातें सुनाते हैं, और साथ साथ हमारा श्रृंगार करते रहते हैं। तो पहले तो हम क्या थे, बाबा का बनने से पहले अगर हम अपने आप को देखें, हम क्या थे, अगर कहें कि बिल्कुल असुर थे, तो भी अतिशोक्ति नहीं होगी। चलो कोई ऐसे असुर नहीं भी होंगे, लेकिन पांच विकार तो सब में थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और दूसरे भी दो विकार पांच विकार के साथ, फिर आलस्य अलबेलापन, फिर और भी ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी हेराफेरी बेईमानी छल कपट निंदा चुगली, गिनती करते जाओ तो झूठ सच सब कुछ था। तो यही कहते थे भक्ति में, तो फिर मंदिरों में यही कहते थे ना, मैं मूर्ख खल कामी पापी, स्वयं को कामी पापी कहते थे, और फिर कहते थे कृपा करो। तो अभी हम समझते ना, बाबा ने आकर के हम पर कितनी कृपा की है। कृपा में क्या किया बाबा ने, पहले तो हमें रियलाइज कराया, कितना बड़ा रियलाइजेशन दिया, स्वमान देकर के महसूस कराया कि बच्चे तुम जो अपने आप को समझते थे, जो आरती में गाते थे मैं मूर्ख खल कामी पापी, और फिर कृपा मांगते थे मुझ बाबा से, तो अब आपको रियलाइज कराया कि अब ये खल कामी पापी आप नहीं हो, आप तो एक शुद्ध पवित्र शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हो। तो पहला पाठ यही बाबा ने पढ़ाया हमको, पहला ही यह पाठ में अनुभव कराया कि वास्तव में हम है कौन। फिर बाबा ने दूसरा पाठ पढ़ाया कि जिसको आप ढूंढ रहे थे, कण कण में ढूंढ रहे थे, पत्थर भीतर में ढूंढ रहे थे, वो तो मैं परमधाम निवासी हूँ और मैं आता हूँ तुम बच्चों को शुद्ध बनाने। तो हमारा जो भटकना था वो बंद हो गया, पहले तो मांगना बंद हो गया, कृपा मांगना रहम मांगना शांति मांगना, जो हम भक्ति मार्ग में भगवान से मांगते थे वो मांगना तो बंद हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या करते थे, मांगते तो थे लेकिन भगवान को ढूंढते थे, कितने मंदिर ठिकाने हम कहाँ कहाँ न भटके, तो वो बाबा ने हमारा भटकना भी बंद करा दिया, मांगना भी बंद करा दिया, भटकना भी बंद करा दिया, तो जैसे ठिकाना दे दिया और अंतर बता दिया कि बच्चे भक्ति मार्ग में तुम क्या क्या करते थे, अब ज्ञान मार्ग में तुमको क्या क्या करना है। भक्ति मार्ग में तो भगवान से हर वक्त मांगते ही रहते थे, अब बाबा कहते हैं मांगना बंद, कुछ भी नहीं मांगना है बाबा से, लेकिन बाबा को दिल से थैंक्स देना है, बाबा से बातें करो तो भी बाबा को हर घड़ी थैंक्स दो, धन्यवाद दो, बाबा आपने बहुत कुछ दिया है, और जो बाबा ने दिया है वो सेवा अर्थ दिया है, सेवा अर्थ दिया है। तो जब सेवा अर्थ दिया है तो उसको सफल कर रहे हैं, इसलिए मांगना तो बंद, बाबा अपने आप देता है, बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख। पहले तो हाथ ऐसे ही सदा पसार कर ही रहते थे, अब बाबा कहते ऐसे की बजाय आशीर्वाद का हाथ रखो, दुआओं का हाथ रखो, वरदानों का हाथ रखो, दाता का हाथ रखो, है ना, चार प्रकार का हाथ है, एक हाथ है वरदान का हाथ, देवियों को वरदान का हाथ दिखाते, दूसरा हाथ है आशीर्वाद का हाथ, सिर पर भाई आशीर्वाद करो दुआ करो, तो आशीर्वाद दुआ का हाथ वो वरदान का हाथ, और तीसरा है दाता का हाथ, जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं दाता, वो दाता बन के अशरफियाँ उसके हाथ से निकल रही है, और चौथा है भिखारी का हाथ जो मांगता ही रहता है सदा। तो अब हमारा हाथ भिखारी का नहीं है, लेकिन मास्टर दाता है, जो भगवान ने हमें दिया है हम औरों को बांटते हैं, खजाने मिलते जाते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों का, फिर समय श्वास संकल्प, ये भी सब खजाने ही हैं। और मनसा वाचा कर्मणा हम इनसे सेवा करते हैं, है ना। तो ज्ञान गुण शक्तियाँ हम मनसा वाचा कर्मणा द्वारा देते रहते हैं, तो हम कितने भरपूर हैं, जितना देते उतना और भरते जाते, तो कितना अंतर हो गया भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में। अब इस अंतर के बाद फिर बाबा हमें क्या दूसरा क्या लक्ष्य देते हैं, बच्चे हाँ मुझे याद करो, क्योंकि इतने जन्मों के विकर्म हैं हमारे सिर पर, 63 जन्मों के विकर्म हैं, तो इतनी हमें कमाई करनी है। कितनी कमाई, कितनी कमाई, उसकी क्या लिमिट है, क्योंकि कर्जा बहुत है सिर पर। जैसे किसके सिर पर बहुत कर्जा होता है मान लो, तो उसको कितनी कमाई करनी पड़ती है ना, बहुत कमाई करे तभी तो कर्जा उतारे। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हारे ऊपर 63 जन्मों का कर्जा है, क्योंकि पुण्य तो नाम मात्र ही किया, जो भी कर्म किए द्वापर युग से वो देह अभिमान के वशी किए, और देह अभिमान के वश जो कर्म किए वो तो सब पाप के खाते में गए, और थोड़ा बहुत चलो पुण्य किया, पुण्य थोड़ा बहुत तो किया ना, ऐसे नहीं कि नहीं किया, कुछ धर्मशाला खोली, अस्पताल में मदद किया, या कोई और अच्छे कार्य में मदद किया, तो चलो कुछ दुआएं मिल गई उससे, लेकिन फिर भी पाप का जो घड़ा है वो तो भरता ही गया, उसकी भेंट में पुण्य तो बहुत ही कम था। और इस समय इतना पाप हमारा सिर पर है, जो बाबा कहते हैं अभी 3 कार्य साथ में करना है। कौन से 3 कार्य साथ में करना है? एक तो जो 63 जन्मों का हिसाब किताब है या बोझ है उसको उतारना है, उसको उतारना है। तो कैसे उतारेंगे उसकी युक्ति भी बाबा देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। अगर योग बल से नहीं ये हिसाब किताब पूरा किया तो फिर सजा बल से हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि दो ही तरीके हैं विकर्म विनाश करने के, ये दो ही तरीके हैं, या तो योग बल या तो सजा बल। तो इसलिए 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है कर्मों का, पाप कर्मों का खाता, वो योग बल से चुकतू करना है। इसलिए निरंतर बाबा कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो। कई कहते बाबा रोज रोज वही कहते मुझे याद करो, पता है याद करना है, लेकिन करते क्यों नहीं है? फिर बाबा को कहना पड़ता बार बार, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे। 63 जन्मों की मेहल है ना। और दूसरा काम कौन सा करना है? 21 जन्मों के लिए इतनी कमाई करनी है। अभी जो संगम पर हमारी कमाई जो हमें करनी है, एक तो पहले कर्जा चुकतू करना है, उसके लिए भी तो कमाना पड़ेगा ना, तो कर्जा चुकतू करने लिए कमाना, और दूसरा जमा करने लिए कमाना। जो 21 जन्म हमारा साथ चलेगा वो कमाई हमारे साथ चलेगी, जो यहाँ हम कमाई करेंगे। और तीसरी क्या बात है कि आगे कोई पाप नहीं करना, जो हो चुका वो तो हो चुका, उसको मिटाने का रास्ता बाबा बताते हैं, आगे का कैसे जमा करना है वो भी बाबा रास्ता बताते हैं। कैसे आगे का जमा करोगे? तन से मन से धन से मनसा वाचा कर्मणा सेवा करो। ये सेवा से आपका पुण्य बनेगा, सेवा से आपको दुआएं मिलेगी, सेवा से आपका भाग्य बनेगा। पहले तो हम ये कभी सोचते ही नहीं थे, सेवा सेवा तो सोचते ही नहीं थे, बस मुझे मिले, स्वार्थ ही स्वार्थ था। अभी बुद्धि से स्वार्थ हट गया, मुझे नहीं चाहिए, बस बाबा बाबा के लिए। तो सेवा की भावना बढ़ गई, जिससे पुण्य का खाता बन जाता है। विकारों को जीतते हैं, जो बाबा कहते अंश मात्र भी विकार न रहे, तो आगे कोई पाप का खाता नहीं बनाना है। जो पिछला पाप का खाता है वो चुकतू करना है और आगे पुण्य का खाता जमा करना है। ये तीन बातें संगम पर हमें करनी है, और जैसे ये संगम पर करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को डबल लाइट महसूस करते हैं। पहले तो कितना बोझ था, एक तो विकर्मों का बोझ था, दूसरा व्यर्थ संकल्पों का बोझ था, बोझ था ना ये सारा। कल भी बाबा ने कहा कि ये जो भी संबंध है वो बंधन बन गए, तो बंधन बन गए, वो बंधन का भी एक बोझ होता है, होता है ना, कोई बंधन में हो, उनकी वो उनको ये जंजीरें लगी हुई हो, तो कितना अपने आप को बोझ वाला महसूस करता है, क्योंकि वो जंजीरें तो बहुत भारी होती है, चल भी नहीं पाता है वो, तो इसीलिए वो बोझ था। और बाबा ने हमें कैसे युक्ति बताई कि हल्का बनो, डबल लाइट बनो। डबल लाइट बनने के लिए क्या युक्ति बताई, पहले तो आत्मा हूँ मैं, ज्योति हूँ, ये ज्योति हूँ ये सदा याद रखो। जो बाबा कहते हैं कर्म करो फिर कर्म से न्यारे हो जाओ, देह में आओ देह से न्यारे हो जाओ, ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम वो ज्योति स्थिति का अनुभव करेंगे। तो डबल लाइट में एक लाइट है ज्योति और दूसरी लाइट है हल्कापन। तो जैसे अपने आप को अति सूक्ष्म ज्योति महसूस करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम ये देह भान से दूर हो जाते हैं, और देह भान से दूर होना, देह अभिमान से दूर होना, तो हमारे विकर्म बनना बंद हो जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान ही सभी विकारों की जड़ है। द्वापर युग से ये देह अभिमान आया, तभी तो विकार आए, और ये केवल बाबा नहीं कहते, सभी धर्मों में है ये। क्रिश्चियनिटी का तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ बताते ना फर्स्ट ये टेस्टामेंट बताते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि मनुष्य का पतन कैसे हुआ। भगवान ने तो सबको पैराडाइज में भेजा, पैराडाइज स्वर्ग, वो तो स्वर्ग एक तो परम धाम को ही वो स्वर्ग मानते हैं, परंतु धरती पर जो है उसको पैराडाइज कहते हैं, और भगवान जहाँ रहते हैं वो हेवन कहते हैं, तो पैराडाइज धरती पर है। तो उन्होंने क्या कहा, वो क्या समझते हैं कि भगवान ने सबको पैराडाइज में भेजा, इस धरती पर भेजा, और बहुत अच्छा सुंदर सब कुछ था इस धरती पर। तो एडम और ईव को भेजा कि जाओ इस प्रकृति का सुख प्राप्त करो, तो 1000 साल वो बताते 1000 साल तक एडम और ईव ने प्रकृति का बहुत सुख पाया, लेकिन भगवान ने उनको साथ साथ चेतावनी भी दी कि ये सुख खूब पाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक वर्जित फल है, वो वर्जित फल नहीं खाना, बाकी जो चाहिए सो करना, वो वर्जित फल नहीं खाना। तो 1000 साल तक तो खूब सुख अनुभव किया, पर एक दिन उनको संकल्प आया कि क्यों भगवान ने हमको रोका है वो वर्जित फल खाने के लिए, क्यों रोका है। तो उसमें भी बताते हैं जो ईव थी, वो ईव ने एडम को उकसाया, स्त्री पति को उकसाती है ना, पति को उकसाया कि ये भगवान का कहना मत मानो, या कोई बताते कि शैतान आया, सैटन, वो सांप के रूप में दिखाते हैं, और उसने कहा कि वो फल खाओ, हाँ आपको बहुत मीठा फल है आप खाओ, और ईव ने भी एडम को कहा कि वो फल खाओ, भगवान का कहना भूल गए, और फिर एडम गया और वो फल लेकर आया और दोनों ने मिल करके खाया। अब जैसे ही खाया तो दोनों को अनुभव हुआ कि हम तो वस्त्रहीन है, नग्न है। हाँ, उस कपड़े वपड़े तो थे नहीं, वो तो पत्ते ही पहनते थे ऐसे बताते हैं, तो हम तो नग्न है। और जैसे ही देह को देखा तुरंत कामातुर हो गए, काम वासना के वशीभूत हो गए। 1000 साल तक तो काम वासना थी नहीं, क्योंकि वर्जित फल खाया नहीं था और पैराडाइज का बहुत सुख लिया था, परंतु जैसे ही खाया तुरंत दे अभिमान के, वो तो वर्जित फल कहते हैं, बाबा कहते हैं दे अभिमान में आए द्वापर युग से। और जैसे ही काम वासना के वश हुए उसके बाद भगवान ने दोनों को श्राप दिया, दोनों को श्राप मिल गया। क्या श्राप मिला? ईव को श्राप मिला कि तुम गर्भ में बच्चे को पालोगी, उसका कष्ट सहन करोगी। और फिर एडम को क्या श्राप मिला कि उस बच्चे की पालना करने के लिए तुम दिन रात खून पसीना एक करोगे बच्चे की पालना के लिए। और ईव को श्राप दिया कि तुम बच्चे को जन्म दोगी उस कष्ट के साथ। तो देखो दोनों को श्राप मिल गया और दोनों नरक में आ गए। तो कहाँ पैराडाइज में थे और कहाँ नरक में आ गए, तो ये बाइबल में आता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो ये बेहद की बात, सतयुग में हम देही अभिमानी थे नेचुरल रूप में और द्वापर युग से देह अभिमान शुरू हुआ और कैसे विकारों के वश हुए। फिर अभी भगवान आकर हमें कहते हैं बच्चे अभी देह अभिमान को जीतो, ये देह अभिमान से तुम भारी हो गए। देह इतनी बड़ी है, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो, कितनी कितनी बड़ी देह, कितना वजन। और आत्मा देखो कितनी सूक्ष्म, कोई वजन नहीं। तो तुम सचमुच वो हो, ये 70, 80, 100 किलो वाला शरीर नहीं हो। तो ये अभ्यास बाबा हमें सिखाते, योग में हम क्या करते यही अभ्यास करते, अभी अभी शरीर में आकर कर्म किया, अभी अभी अशरीरी हो गए। उसमें भी बाबा 3 स्टेजेस बताते। पहली स्टेज है आत्मा अभिमानी स्टेज, जिसको बाबा देही अभिमानी की स्टेज कहते हैं। देही अभिमानी की स्टेज में क्या अनुभव करना, मैं आत्मा राजा हूँ इस देह की इंद्रियों का, और देह की इंद्रियों का राजा बन करके इस देह को द्वारा कर्म करना, राजा बन करके मैं मालिक हूँ, मैं करावनहार हूँ इस इंद्रियों द्वारा, हाँ करवाता हूँ। तो ये इंद्रियाँ अलग है मेरे से, ये देही अभिमानी की स्थिति हम अनुभव करते हैं। कर्म को नहीं छोड़ते हैं, कर्म को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जो कर्म करते करते अभिमान आ जाता है उस अभिमान को छोड़ते, तो वो देही अभिमानी स्थिति है। फिर और आगे बढ़ते हैं, इतना सब जो कुछ बाबा ने हमें दिया है, बाबा कहते उसका मोह भी नहीं रखो, इस देह में तो मोह रखो ही नहीं, लेकिन जो वस्तु वैभव पदार्थ उसमें भी मोह नहीं रखो, संबंध हाँ किसी में भी मोह नहीं रखो। देह तो सबसे पहले, परंतु जैसे हम देह अभिमान से मुक्त होते हैं, न्यारे होते हैं, तो और चीजें भी तो सामने आती है ना। तो उन सब के बीच में रहते हुए न्यारे प्यारे रहना, फंसना नहीं, छोड़ना भी नहीं, नया जोड़ना भी नहीं, न फंसना न नया जोड़ना, हाँ, और लेकिन निभाना बिना फंसे, वो कौन सी स्थिति है? बाबा उस स्थिति को कहते हैं विदेही स्थिति, राजा जनक की तरह विदेही स्थिति। सब कुछ है सब कुछ है लेकिन कहीं भी आंख डूबती नहीं है, मेरा कुछ नहीं सब बाबा का। ट्रस्टी होकर रहते हैं ये विदेही स्थिति राजा जनक की तरह। ये भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। अगर देही अभिमानी नहीं है तो ये विदेही स्थिति भी नहीं होगी, है ना। राजा जनक ने पहले विदेही स्थिति का अनुभव करने लिए वो देही अभिमानी बना। जनक राजा की कहानी आती है ना, अष्टावकर, वो उसने तो कई उसके सामने बड़े बड़े विद्वान आ गए तो सबको यही प्रश्न किया, मुझे एक सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। कई विद्वान आए, कईयों ने कोशिश की उनको ज्ञान देने की। उसने कहा इतना सब ज्ञान कुछ नहीं चाहिए, एक सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए। अब एक सेकंड में जीवन मुक्ति कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? फिर दिखाते अष्टावकर आया, उसका शरीर के 8 कुब थे, बड़ा बेढंगा शरीर था उसका, हाँ बड़ा कुरूप भी लग रहा था। तो उसने कहा मैं आपको एक सेकंड में जीवन मुक्ति दिला सकता हूँ, क्योंकि राजा जनक तो हाँ, क्योंकि उसको किसी ने भी ज्ञान नहीं दिया एक सेकंड में जीवन मुक्ति का। लेकिन अष्टावक्र ने, वो जैसे ही राजा घोड़े पर चढ़ रहा था वापस महल जाने के लिए, अष्टावक्र ने उनको रोका और कहा मैं आपको एक सेकंड में जीवन मुक्ति दिला सकता हूँ। तो राजा जनक घोड़े पर चढ़ रहा था तो एक पैर उसका उसका घोड़े के का जो जहाँ पांव रखते हैं ना घोड़े पर, उस पर था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, और दूसरा पैर उसका धरती पर था। तो एक पैर घोड़े पर था और एक पैर धरती पर, और वो जैसे कूद के ऊपर चढ़ते हैं ना घोड़े पर बैठने लिए, तो अभी एक ही पैर उसका था और एक तो पैर धरती पर था। तो राजा ने राजा से पूछा, अष्टावक्र ने, राजन आप कहाँ हो? कई कहानियां इसमें, एक कहानी ये भी है, राजा से पूछा आप कहाँ हो? तो उसने कहा मैं कहाँ हूँ, घोड़े पर हूँ। तो कहा नहीं, आपका एक पैर तो धरती पर भी है, तो आप कहाँ हो? तो कहा धरती पर भी हूँ। तो धरती पर भी हूँ और घोड़े पर भी हूँ, दोनों पर हूँ और दोनों पर नहीं हूँ। ये है एक सेकंड में जीवन मुक्ति, हूँ और नहीं हूँ, संसार में है और संसार में नहीं है, ये है सेकंड में जीवन मुक्ति। जिसको बाबा कहते हैं छोड़ना भी कुछ नहीं है, है संसार में है, कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से अलिप्त है, संसार में है और संसार में नहीं है, कमल फूल समान है। ये विदेही स्थिति बाबा कहते हैं तुम्हारी बनती है कब, जब तुम देही अभिमानी बनती हो। तो सब कुछ करते हुए न्यारे भी रहते, प्यारे भी रहते। हाँ, बाबा कहते हैं न्यारे भी बनो प्यारे भी बनो, न्यारे बनकर प्यारे बनो, प्यारे बनकर न्यारे नहीं बनो, दोनों में अंतर है। प्यारे बनकर न्यारा बनना माना पहले तो बहुत मोह दिखाना, बहुत मोह दिखाना, और फिर ऐसा न्यारा जैसे कि कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन न्यारे बन के प्यारे बनो, अर्थात अंदर से न्यारापन लेकिन व्यवहार में सबसे प्यारापन, सबसे प्यारापन। तो सबसे प्यार, ऐसे नहीं एक से प्यार और बाकी से अब प्यार नहीं, या बाकी सबसे प्यार और एक से प्यार नहीं, नहीं। न्यारा और प्यारा माना सबसे न्यारा और सबका प्यारा। जिसको बाबा कहते हैं छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है और नया बनाना भी नहीं है, तभी तो न्यारे प्यारे हो सकेंगे ना। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को विदेही बनाते। फिर उससे ऊंची स्टेज फिर बाबा कहते अशरीरी अवस्था, अशरीरी अवस्था। तो अशरीरी अवस्था और देही अभिमानी अवस्था में क्या अंतर है? देही अभिमानी स्थिति कर्म में, व्यवहार में अनुभव करते हैं, आए कर्म किया फिर फिर कर्म से न्यारे हो गए, फंसे नहीं। और विदेही स्थिति माना चारों ओर रहते हुए सब कुछ करते हुए न्यारे प्यारे। और तीसरा, जब हम योग में बैठते हैं तब हम अशरीरी अवस्था का अनुभव करते हैं, आत्मा बिल्कुल देह से न्यारी, बस एक बिंदु बन गए और वो बिंदु बन के सिंधु में समा गए। आज भी बाबा ने कहा ना, लोग मोक्ष चाहते, आना ही नहीं है दुनिया में, और बाबा कहते वो तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आत्मा कोई परमात्मा में लीन हो जाए, फिर तो अस्तित्व ही खत्म हो जाए, लेकिन अविनाशी है। लेकिन बाबा के प्यार में खो जाना, प्यार में समा जाना, केवल याद करना नहीं, याद आना नहीं, याद सताना नहीं, लेकिन याद में खो जाना। कई बार हम कहते हैं ना, आज बाबा की बहुत याद आ रही है, आज बाबा की बहुत याद आ रही है, या आज मैंने बाबा को बहुत याद किया। दोनों में अंतर है, एक ही बात है। आज बाबा की बहुत याद आ रही थी, आज मैंने बाबा को बहुत याद किया, दोनों में क्या अंतर है? एक ही बात, याद अपने आप आती है और करना माना खुद करते हैं, लेकिन अंदर की स्थिति क्या होती है? याद अपने आप आती है या हम करते हैं, वो उसमें अंदर की स्थिति में क्या अंतर है? अपने आप याद आती तो खुशी होती, पर याद अपने आप कैसे आती है? याद अपने आप तब आती है जब अंदर में प्रेम होता है। जहाँ प्रेम है ना, वहां अपने आप याद आती है। और करते तब है जब स्वार्थ होता है ना? दोनों में अंतर है। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति हमारे सामने आ गया और अरे हम कहते अरे आप आ गए, अच्छा हुआ, अभी अभी आपको याद कर रहे थे। कई बार हम याद करते किसी को और वो पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे अच्छा हुआ या आप आ गए, अभी अभी आपको याद कर रहे थे। तो उसका रिएक्शन क्या होता है उस समय? वो कहता है क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था? क्या काम था? क्योंकि याद कब किया जाता है? जब कुछ उसमें काम हो। तो फिर वो कहेंगे भाई बात ये थी, जो भी कुछ बात है। तो वो स्वार्थ की याद है, और जो याद अपने आप आती है वो प्रेम की याद है, वो स्नेह की याद है। और तीसरी भी याद है जो सताती है, माना हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। किसी नजदीकी संबंध की मृत्यु हो गई, मान लो बहुत नजदीकी था, बहुत प्यार था, और उसकी मृत्यु हो गई। अब आपको कहा जाएगा भी भूल जाओ, याद मत करो, आप कहेंगे कैसे भूलूं, उसकी याद भूलती नहीं। एक है याद आना, दूसरा है याद करना, और तीसरा है भूलना ही नहीं। तो वो भूलना ही नहीं, वो याद सताती कब है? जब संबंध की याद होती है। संबंध जहाँ होता है ना, बाकी तो दुनिया में मरते रहते हैं लोग, इसे थोड़ी की याद सताती है, पर जहाँ घनिष्ठ संबंध है वहाँ याद सताती है। परंतु बाबा की याद कौन सी याद है? आने वाली, करने वाली, सताने वाली, या इनसे अलग कौन सी याद है? अगर कहेंगे आने वाली तो चलो प्रेम पर, प्रेम की याद है। करने वाली तो स्वार्थ की याद है। तीसरी है बहुत सताती है बाबा की याद, माना संबंध है, बाबा से संबंध है, पर इनसे भी कोई ऊंची याद है? इनसे ऊंची याद कौन सी है? इनसे ऊंची याद है समाने वाली याद, समाने वाली। जैसे जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहेंगे प्यार में खो गया, इतना प्यार जो उस प्यार में खो गया, तो खोने वाली याद कौन सी है? वो खाली आने वाली, करने वाली, सताने वाली नहीं है। सताने वाली याद तो वियोग की याद है, आने वाली याद स्वार्थ की याद है, करने वाली चलो थोड़ा प्यार है, लेकिन समाने वाली जो अलग हो ही नहीं उनसे, जिसको बाबा कहते हैं साथ और साथी, अलग हो ही नहीं। एक मिसाल देते हैं कि कोई शिष्य था, को गुरु ने कहा कि ऐसे हम ईश्वर का ईश्वर को याद करो, तो उसने कहा कि कैसे याद करूं ये जो पात्र है उसमें तो छेद है, कैसे याद करूं? तो छेद है तो भरते हैं, फिर छेद से निकल जाता है। तो कहा छेद से निकल जाता तब है जब आप बाहर आते हो, वो पात्र डाली दो सदा के लिए, तो वो पात्र तो भरा हुआ ही रहेगा, खाली होगा ही नहीं, क्योंकि उसी में पड़ा है ना। जल में डाली दिया तो वो तो भरा ही रहेगा, भले कितने भी छेद हो, अगर निकलेगा भी तो फिर भर जाएगा। तो इसको बाबा कहते हैं कंबाइंड फॉर्म, इसको बाबा कहते हैं समाई हुई याद, इसको बाबा कहते हैं साथी और साथ, ये अलग अलग शब्द है। इसको बाबा कहते हैं सदा, कभी कभी नहीं, सदा। बाबा को कभी कभी शब्द पसंद नहीं, तो सदा बाबा की याद में खोए हुए। इसलिए दादी जानकी क्या कहती, मैं कौन, मेरा कौन, बस ऐसी याद में रहती थी, उसी नशे में रहती थी, जो कभी बाहर आती नहीं थी उस नशे से, ऐसा नशा था दादी को। तो क्या हमारी याद भी ऐसी है जो बस एक बाबा के सिवा और कोई बुद्धि में नहीं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन न्यारे और प्यारे? अब वही स्थिति हमको हल्का बनाएगी, कहीं भी लगाओ झुकाओ नहीं। दादी बहुत कहती थी लगाओ झुकाओ अटकाओ, कितने शब्द है ये सब, लेकिन इन सब से परे सब संबंध एक के साथ। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर एक संबंध भी कम होगा शिव बाबा के साथ, हाँ, किसी देहधारी से वो संबंध है और वो शिव बाबा से कम है, तो फिर भविष्य में आपके कोई ऐसे जन्म में उस संबंध का अभाव आपको महसूस होगा। होता है ना, कईयों को बच्चा बच्चा नहीं होता है, अभाव होता है, बच्चा नहीं है, तो जरूर किसी जन्म में हाँ आपने भगवान को बच्चा नहीं बनाया है, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सब संबंध मेरे साथ जोड़ो, बच्चा भी बनाओ, बच्चा भी बनाओ, पहले बच्चा बनाओ, फिर बाबा आपको बच्चा बनाकर सब आपको आप पर वारी जाएगा। बच्चा बनाओ माना सब बाबा आपका है, बाबा कहेगा रखो अपने पास, लेकिन मेरा समझ कर चलो। तो सब संबंध बाबा के साथ। एक हंसी की बात सुनाऊं, एक माता थी, तो वो माता जो थी ना, तो वो हर वक्त वो बाबा को बच्चा ही मानती थी, बाबा मेरा बच्चा है। उसका नाम रखा था सोनू, बाबा का नाम सोनू। तो एक दिन मैं तो हमेशा के बाबा मेरा बच्चा है, मेरा सोनू बच्चा है। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये सोनू बच्चा जो आपका है, ये बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है? क्योंकि तीन चार बच्चे होते तो बड़ा बेटा और छोटा बेटा, तो बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है? अब पहले सोच में पड़ गई, वो बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है? तो उसने कहा कि कभी मैं उसको बड़ा बेटा बना लेती हूँ, कभी छोटा बेटा बना लेती हूँ। तो मैंने कहा बड़ा बेटा भी बना लेती हूँ, छोटा भी बना लेती हूँ, तो बड़ा बनाती हो कैसे बनाती हो और छोटा कैसे बनाती हो? तो उसने कहा जब मुझे कोई राय लेनी होती है ना, हाँ बाबा मैं क्या करूँ, बाबा हाँ मुझे मदद करो, बाबा जैसे बाबा से बातें करती हूँ तो मैं उनको बड़ा बेटा मानती हूँ, और मैं उसी समय महसूस करती हूँ मैंने बाबा को सब सौंप दिया, वो बाबा की टचिंग आती है, वो बड़ा बेटा ने काम किया मेरा। फिर मैंने कहा अच्छा फिर छोटा बच्चा के छोटा बेटा कैसे मानते हो, तो कहती जब कोई मुझे कोई चीज़ मिलती नहीं ना, सोनू मेरा चप्पल कहाँ है, सोनू मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा फलाना कहाँ है, तो सोनू मेरा ये छोटी छोटी चीज़ें मिलती नहीं है ना, पता नहीं कहाँ रख दिया। और सचमुच जैसे मैं कहती हूँ सोनू मेरा चप्पल कहाँ है, तो देखती हूँ वहीं है। मेरा चश्मा कहाँ है, तो बिल्कुल अभी अभी देखा कि नहीं था, अभी अभी कहाँ से आ गया चश्मा। कहती एक दिन में मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी और अकेली थी मैं, तो बहुत प्यास लगी, तो मैंने कहा सोनू बेटा हाँ मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अभी सोनू बेटा पानी कैसे पिलाए, लेकिन कहती है मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मेरा मेरा मुंह माना पानी आ गया, अपने आप पानी आ गया, जो मेरा एकदम सूखा मुंह था जैसे बाबा ने मेरे मुख में पानी डाल दिया, बाबा ने मुझे पानी पिलाया, बेटा पानी दो पानी, बेटा पानी लाओ, बच्चे को ही कहेंगे ना छोटे बच्चे को, तो इसलिए बाबा की इतनी मदद। और सचमुच वो इतना अनुभव अच्छा करती है, बात मत पूछो, बाबा को बच्चा बनाए और कुछ भी है बस बाबा छोड़ो ना, बाबा कहते बाबा आप संभालो, मेरे को नहीं आता। हाँ छोटा बच्चा भी तो ऐसे ही कहता मम्मी आप लो, बोझ नहीं उठा सकते, उठा सकता। तो इसीलिए बाबा को अपना साथी बनाना, बाबा को अपना वारिस बनाना, जिससे हम इतने हल्के हो जाते हैं जो बात मत पूछो। तो एक तो बिंदु उसमें ज्योति हल्का, और दूसरा बाबा से सर्व संबंध उससे उसमें हल्का। तो देखो जैसे हम ये डबल लाइट बनते हैं तो क्या महसूस होता है, हम फरिश्ते बन गए। क्योंकि फरिश्ते कौन होते हैं, डबल लाइट, फर्श से कोई रिश्ता नहीं। पर वंडरफुल बात तो यही है, छोड़ना भी कुछ नहीं है। तो जब बाबा हम बच्चों को ये मध्य मार्ग सिखाते तो देखो न्यारे भी रहते प्यारे भी रहते। ये मध्य मार्ग है, भगवान हमें संगम पर ले आते हैं ना। अभी हम कलयुग में हैं ना सतयुग में हैं, सतयुग में तो बहुत वैभव होंगे, कोई कमी नहीं होगी, कलयुग में भी बहुत वैभव है, दुनिया में कोई कमी नहीं है, है ना, जिनके पास है तो उनके पास है, लेकिन सब भौतिकवादी है क्योंकि सब देह अभिमानी है। और सतयुग में भी सब वैभव होंगे लेकिन सब देही अभिमानी है। तो देही अभिमानी होकर के सुखों को भोगना और देही अभिमानी होकर के सुखों को भोगना, उसमें बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर देह अभिमानी होकर सुखों को भोगेंगे तो अंत में परिणाम दुखद ही होगा, और देही अभिमानी होकर के सुखों को भोगेंगे तो उसका परिणाम सुख में ही अनुभव होगा, है ना। देह अभिमानी होकर के हम कैसे सुखों को भोगते हैं, इंद्रियों का सुख वही सुख समझते हैं ना, जीव रस कन रस स्पर्श रस नेत्र रस गंध रस, ये पंच इंद्रियों के पंच रस है। और ये पंच इंद्रियों के पंच रस जो है वो हमें अल्पकाल का सुख देते हैं, और वो अल्पकाल का सुख विकार का रूप बन जाता है। कैसे, पहले देखो स्पर्श रस, स्पर्श रस का जो विकराल स्वरूप है वो है काम वासना, है ना। काम वासना क्या है, स्पर्श का विकराल स्वरूप, उसमें इतनी उत्तेजना आती है जो मनुष्य उसी कोई आनंद समझ लेता है। तो बाबा कहते हैं ये काम विकार का अति विकराल स्वरूप है स्पर्श रस। फिर दूसरा है नेत्र रस, तो नेत्र रस माना क्रोध, जब किसी को अंदर में गुस्सा आता है ना, तो सबसे पहले वो गुस्सा मुख से नहीं निकलता है, आंखों से निकलता है। कहते चेहरा मन का दर्पण है, लेकिन चेहरे में भी पहले आंखें, आंखों से प्यार भी झलकता है, भले कुछ बोलो ही या न बोलो, लेकिन वो आंखें दिखाती है, और आंखों से क्रोध भी दिखाई देता है। तो ये क्रोध जो है वो नेत्र रस है। तीसरा फिर लोभ, तो लोभ कौन सा है, जीव रस। खाऊं खाऊं खाऊं, बाबा कहते तेरे पेट में बलाऊं, सारा दिन खाते रहना, ये अच्छा लगा खा लो, है ना। कितने इस पर चुटकुले आ गए, वो ब्राह्मण को खिलाते हैं तो ब्राह्मण तो खूब खा लेता है, खूब खाता है, खूब खाता है, लड्डू भी खाता है, सब खाता है, और एकदम जैसे यहाँ तक उसका भर गया पेट। तो फिर उसको अभी उसका हजम नहीं, अभी वो हो रहा परेशान हो गया, तो किसी ने उसको कहा कि पंडित जी एक हाजमोला खा लो, हाजमोला खा लो तो आपका ये हजम होगा। तो कहते हैं अरे हाजमोला खाने की जगह होती तो लड्डू न खा लेता। हाजमोला नहीं खा सकता, इतना भर गया है पेट, हाजमोला भी नहीं, मुंह में कुछ अंदर और जा ही नहीं रहा है, तो इतना खाया। कई ऐसे चुटकुले हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये लोभ रस, ये जीव रस। और फिर है मोह, मोह जो है वो ये गंध रस, जिसमें बहुत मोह होता है ना, उसका वो गंध लेना चाहते हैं, गंध उसके बस उसको चिपके हुए रहेंगे वो गंध रस, क्योंकि वो गंध उसकी जो आती है ना वो मोह की निशानी है। और बाबा कहते हैं इनसे उपराम रहना है। प्रेम क्यों नहीं हो, प्रेम तो सबसे है, क्यों नहीं है प्रेम। और अहंकार है कन रस, कन कान का रस। किसी ने कुछ मेरे लिए बुरा कहा, मेरी ग्लानि की, कान खुल जाते हैं, अरे क्या कहा उसने मेरे लिए, ऐसे कहा, क्या समझता है, इतना अभिमान आ जाता है, समझते मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो ये कान, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पंच इंद्रियों का जो रस है उसका विकराल स्वरूप है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को इंद्रियों से परे करते हैं, बस आत्मा हूँ आत्मा हूँ। कल बाबा ने कहा या आज का परम धाम में तो खाना पीना है ही नहीं, परम धाम में तो बस एक ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान है, शरीर ही नहीं है, पंच इंद्रियां ही नहीं है, कोई स्थूल रस है ही नहीं, बस आत्मा का रस है। और शिव बाबा के साथ बैठे हैं, शिव बाबा के साथ है तो वो परमानंद का अनुभव कर रहे। हालांकि बाबा कहते हैं आत्मा को कुछ अनुभव नहीं है परम धाम में, वो तो शरीर में जब आती है तब होता अनुभव, लेकिन भगवान के साथ तो है ना आत्मा। तो आत्मा भाई भाई के रूप में परम शांति में, परम सब परम ही है वहां। तो बाबा कहते हैं फिर ये यात्रा करो, एक सेकंड में यहाँ आओ, एक सेकंड में परम धाम जाओ, एक सेकंड में शरीर से अलग हो जाओ, एक सेकंड में शरीर में आओ, एक सेकंड में इस दुनिया में, एक दूसरे सेकंड में सत्युग में चले जाओ, ये एक्सरसाइज करो। इसलिए आप देखेंगे हर मुरली में, हर मुरली, आप हर मुरली में कोई भी मुरली देख लो, अभी भी बाबा विनाश की बात करेंगे, इतना नर्क की बातें करेंगे, कलयुग की बातें करेंगे, क्या क्या यहाँ दुनिया में हो रहा है वो बातें करेंगे, और फिर दूसरे ही पल दूसरा वाक्य बाबा सत्युग का वर्णन करेंगे, सत्युग में ये होगा, सत्युग में ये होगा। तो अभी कलयुग की बातें की, अभी फिर सत्युग की बातें, ताकि कलयुग की बातों में ठहर नहीं जाओ, क्योंकि कलयुग की बातों में ठहर जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए फिर सत्युग को याद करो, बुद्धि उपराम रहे, लंगर हमारा खुला हुआ है, हम जा रहे हैं। अभी इतनी अभी ट्रांसपोर्ट विंग वालों की भट्टी चल रही है ज्ञान सरोवर में, उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, भट्टी है बाबा के बच्चों की ट्रांसपोर्ट विंग वाले, तो उन्होंने भट्टी को क्या टाइटल दिया है, रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी, वो भी जर्नी है ना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो रिटर्न जर्नी। तो बहुत अच्छी उनके क्लासेस हो रहे हैं। तो कहने का भाव है कि बस वो डबल लाइट स्थिति आत्मा की सहज बनानी है, तभी तो फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता बनेंगे तभी तो फिर देवता बनेंगे, बिना फरिश्ता बने देवता कैसे बनेंगे, और बिना डबल लाइट बने फरिश्ता भी कैसे बनेंगे। और डबल लाइट होने के लिए कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग भी है, तपस्या भी है, सेवा भी है। तो सभी ने यहाँ बहुत अच्छा अनुभव किया, बाबा के घर में अपने आप को डबल लाइट बना के जा रहे हो, कुछ भी खामियां कमियां कमजोरियां सब बाबा को पत्र में लिख करके दे दिया होगा, और सदा के लिए स्वाहा कर दिए सब स्वाहा। जिन्होंने सचमुच पत्र लिख करके बाबा को दे दिया, स्वाहा कर दिया, वो हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो जरूर बाबा सुनता है। हम तो कई बार आते हैं ना, ये VIPs को लेकर आते हैं, तो वो VIPs को जो उनकी टीचर ले आती है ना, तो वो टीचर जो है वो VIPs को बताती है कि आप बाबा की झोपड़ी में जाएंगे ना, वहाँ बाबा को पत्र लिखना, पत्र लिखना, और आपके अंदर में जो भी आशा है, जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हो, वो भगवान को लिख के दो, और लिख के दो और पत्र डालो। और सचमुच फिर कई बार तो उसका हमें न्यूज़ भी आती है कि बाबा को पत्र ले लिखा और बाबा ने तो कमाल कर दिया। अभी सिक्किम के चीफ मिनिस्टर आए थे, सिक्किम है ना, सिक्किम उसके चीफ मिनिस्टर आए थे, उसकी जो वाइफ है वो बाबा की बच्ची है, तो अपने पति को लेके आई थी सिक्किम का चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर आए, उसको भी थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान है, ज़्यादा नहीं, तो उसको इसकी पत्नी ने उसको बोला था बाबा की झोपड़ी में जाएंगे ना, बाबा को पत्र लिखना। तो जैसे ही उसको मैं दिखा रही थी, तो जैसे झोपड़ी में आया, कहता है मुझे बाबा को पत्र लिखना है, बाबा को पत्र लिखना है। तो फटाफट उसको कागज पेंसिल सबको दिया और बस सबको कहा दूर हटो, मुझे बाबा को पत्र लिखना है। चीफ मिनिस्टर तो उसके आगे पीछे तो बहुत लोग होंगे, लेकिन बस का अकेला बाबा को पत्र लिखना, कम से कम 10-15 मिनट वहाँ झोपड़ी में बैठ के बाबा को पत्र लिखा और बाबा के बॉक्स में डाला, लेटर बॉक्स जो बाबा की झोपड़ी में है। हम कई बार माताओं को देखते हैं, बस वहाँ हमारी नीचे ऑफिस है, वो ऑफिस के पास नीचे बैठ जाती है और फिर मेरे पास ही आती, बहन जी हमको कागज पेंसिल दो ना, कागज पेन दो ना, बाबा को पत्र लिखना है। सचमुच मैंने देखा, कमाल करता है, बाबा को लिखो। तो देखो बाबा की कमाल है, कैसे बाबा सब फिक्रों से फारिग कर देता है। तो फिक्रों से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु, वो सतगुरु को सब दे दो, डबल लाइट बन के यहाँ से जाओ, सब विघ्न समाप्त, सब परिस्थितियाँ वो आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी। हाँ, बाबा ने उस एक मुरली में कहा था ना, आप बच्चे हाथ उठाते हो तो माया भी देख रही है, कि बाबा से प्रतिज्ञा तो की है बच्चों ने, तो माया छोड़ेगी नहीं। लेकिन माया वाया कुछ नहीं है, ये परिस्थितियाँ, माया, हिसाब किताब, ये सब हम इनसे ऊँचे हैं। तो बस डबल लाइट स्थिति बन जाए, हल्के हो जाओ, न्यारे हो जाओ, बाबा को सब सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का भार तेरे हाथ में, बस भक्ति में तो गाते ही थे ना, बहुत गाते हैं, बस अब सौंप दो। तो देखो यहाँ से एकदम डबल लाइट होकर जाना, अभी शाम को बाबा की पहाड़ी पर जाना। कौन जाएंगे बाबा की पहाड़ी पर, सभी जाएंगे, बहुत अच्छा, वहाँ पर बहुत अच्छा योग रहता है, बहुत अच्छा योग चलता है, बहुत बढ़िया। हाँ, और कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा की झोपड़ी पर कैसे बाबा ने हमको जैसे उड़ा दिया। बहुत अच्छा योग करते हैं। चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। डबल लाइट बन गए सब। सब बोझ भार से मुक्त आजाद, देही अभिमानी स्थिति, विदेही अवस्था, शरीरी अवस्था बन गई, हल्के होके उड़ रहे हैं, है ना।